दो चीजें नहीं है कि एक मालूम हो रही इल्म हो। और इसी तरीके से मालूम आलिम के साथ मुत्तहिद है, और मालूम से मुराद क्या है, ये मालूम बिज़ात है ना बिला रहा। मुफसल रबीन के अगर आप इसको सुनेगा वाज़े हो जाएगा। तो दूसरा इद्दा जो फलसफे का है वो ये कि आलिम मालूम और इल्म तीनों मुत्तहिद चीज़ें, यानी तीन चीज़ें नहीं है खारिज में हमारे पास, एक चीज़ है वो है आलिम। इल्म और मालूम उसके साथ मुत्तहिद हो जाते हैं। और किया था ये वो मबना है कि अगर इसको कबूल कर लिया जाए तो इससे बहुत सारी रिवायात काबिल हल हैं, उनमें एक क़यामत का मसला है कि जिसमें तजस्सुम आमाल की बातें हैं। अगर ये मबना ना हो तो इन रिवायात को तब्यीन करना आसान नहीं है। अगरचे किया है जो मुखालिफीन फ़लसफ़ा हैं उलमा, वो तब्यीन करते हैं उसकी, लेकिन यह है कि अगर इस मबने के कायल हो जाएँ और कर लें आसानी से बहुत वाजह तरीके से वो रिवायात तफसीर होती नज़र आती है। भारत ये एक तफसीली बात है कि जब फलसफे में कोई तो उस तफसील में जाएगा तो मालूम होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि इल्म हुसूली की दो किस्में, इल्म हुसूली या कुल्ली है या जुज़्वी है, ये फसल ठानी है। इल्म हुसूली को तकसीम करते हैं कुल्ली और जुज़्वी की तरफ। फिर इल्म जुज़ी को इल्म उसूली जुज़ी जो है इसको तकसीम करते हैं किसकी तरफ, इल्म मादी या ख्याली, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर कुल्ली और जुज़ी आप मंतिक में पढ़ के आए हैं किसे कहते हैं, ज्यादा तबीन की जरूरत नहीं है। कुल्ली किसे कहते हैं कि जिस ऐसा मफहूम के जिसके अंदर काबिलियत मौजूद हो कि वो कसीरीन पर सिदक कर सके। और ये दिक्कत करें, सवाल कोई आपको उलझाने के लिए बना सकता है। मसलन वो कहे कि कुल्ली किसे कहते हैं, मसलन एक गुजीना वो बनाए कुल्ली किसे कहते हैं जिसके मसादिक मुतअद्दिद हों, मसलन दूसरा गुजीना बनाए कि मसलन काबिलियत सिद्क रखता हो, और तीसरा चौथा गुजीना बनाए। आप ये जहन में मत रखें कि कुल्ली उसको कहते हैं जिसके मसादिक मुतअद्दिद हों, तारीख गलत है ये। बल्कि ये जहन में बिठाएं कुल्ली उसको कहेंगे कि जिसके अंदर काबिलियत सिदक मौजूद हो, चाहे उसका एक फर्द भी खारिज में मौजूद ना हो वो कुल्ली कहलाएगा। मसलन हमारे पास मसादिक मौजूद हैं ऐसे मफाहिम कुल्लिया के, कौन से, मसलन वाजिबुल वजूद, कितने मसादिक हैं उसके, एक खुदा एक है, वाजिबुल वजूद एक है। लेकिन कहते हैं चूंकि ये मफहूम वाजिबुल वजूद काबिलियत सिदक रखता है कि अगर बिल फर्ज व बिल फर्ज एक और वाजिबुल वजूद भी आ जाए खारिज में तो ये मफहूम उसके ऊपर भी सिदक करेगा। और एक और हमारे पास मफहूम मौजूद है कि जो है तो कुल्ली लेकिन उसका मिसदाक नहीं है, कौन है, शरीक बारी ताला। शरीक बारी मफहूम ऐसा है जो कुल्ली है, या इसके अलावा इज्तिमा उन नकीज़ैन ये मफहूम है। इज्तिमा उन नकीज़ैन का मफहूम क्या है, खारिज मिसदाक है उसका, नहीं है असल ताकुब मुहाल है उसका, लेकिन आप कहते हैं मफहूम क्या है, कुल्ली है। बस ये ज़हन में रखें कुल्ली और जुज़ी होने का माना क्या है, ऐसा मफहूम कि जिसमें काबिलियत सिदक बरकसीरीन पाई जाती हो, सलाहियत इसकी पाई जाती हो, वो कुल्ली है, और जिसमें यह काबिलियत मौजूद ना हो वो क्या है, जुज़ी। फरमाते हैं कि इल्म हुसूली कुल्ली को इन्होंने नाम दिया है, क्या है, इसको आकल भी कहते हैं और तअक्कुल भी कहते हैं। यानी फलसफे में इल्म कुल्ली इल्म तअक्कुली कहलाता है, इल्म अकली कहलाता है, क्योंकि कुल्ली कहाँ होती है, महला आकल में पाई जाती है। आकल से नीचे जितने मरतबे हैं वो उस कुल्ली के मरतबे में मौजूद नहीं है। फिर जुज़ी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मैंने पहले नाम लिख दिया ताकि मतलब आपके दिन में रहे, लेकिन इसके मिला क्या है, कहते हैं बात होगा, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ, मैं जब तक आपको देखता रहूंगा मेरा ये इल्म इल्म हिस्सी कहलाएगा, क्योंकि इस वक्त मैं इर्तिबात में हूँ मादा के साथ, यानी आपका मादा, उसके साथ मैं मुर्तबित हूँ। अब ये इल्म जब तक आपको देखता रहूंगा ये इल्म क्या कहलाएगा, ये हिस्सी कहलाएगा, लेकिन जब मैं आपसे मुंह फेर लूंगा या आंखें बंद कर लूंगा या कभी मसलन बाद में आपके बाद बारे में मुझे इल्म हासिल करना होगा, मैं आपकी सूरत को जब हाजिर करूंगा वो इल्म क्या कहलाएगा? ख्याली। यानी वहां पर मादे के साथ डायरेक्ट इर्तेबात नहीं होता, होता आपका ही इल्म है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट मादे के साथ इर्तेबात नहीं होता, इस एतबार से इसको कहते हैं कि ये क्या है? इल्म ख्याली है। क्यों? इस वजह से कि ख्याल का नहीं मालूम, मंतिक में मैंने तोजी दिया या नहीं? मंतिक में अर्ज किया था वहां पे मेरे ख्याल में कि ख्याल का काम क्या है? हिफाजत, हिफ्ज करना काम है ख्याल का, और मुतखयला का काम है कि वो क्या करे? मुख्तलिफ शक्लों को बनाए। मतलब 10 सर का इंसान बनाना वह मुतखयला का काम है, लेकिन आपको देखना और फिर उस सूरत का हिफ्ज हो जाना मेरे जहन में, वो हिफ्ज का काम कौन करता है? कुवाए ख्याल करती है। बस आपकी सूरत आपसे इर्तेबात कट होने के बाद जो सूरत कहलाएगी वो सूरत क्या होती? ख्याली होगी। तो अल्लामा फरमाते हैं ये दोनों क्या है? जुज़ई है। क्यों? इस वजह से कि एक खास बंदे के साथ मुर्तबित है। मतलब जब मैं आपके साथ मुर्तबित हूँ इल्म जुज़ई है, क्योंकि फकत आपका इल्म है, किसी और पर सिद्क नहीं कर सकता। और जब आपसे राबता कत हो जाएगा फिर भी आपकी जो सूरत मेरे जहन में मौजूद होगी वो भी क्या है? तमाम खसूसियात के साथ आपके ऊपर ही हमल होगी, आपके ऊपर हमल नहीं होगी, मेरे ऊपर हमल नहीं होगी। बस वो फकत जो सूरत मेरे जहन में आपके ऊपर हमल होने की सलाहियत रखती है फकत, और किसी और पर नहीं कर सकती। इस एतबार से उसको कहते हैं कि ये जुज़ई है। हाँ, यहाँ पर ये इशारा करते हैं कि इल्मे ख्याली को इल्मे जुज़ई क्यों कहते हैं? कहते हैं इस वजह से क्योंकि इल्मे ख्याली हमेशा मौकूफ होता है किसके ऊपर? मादी के ऊपर। यानी मरहला इल्मे मादी के बाद, जैसे मिसाल दी है कि जब मैं आपको देखूंगा ये इल्मे मादी है, लेकिन जब आपसे मुंह फेर लूंगा और फिर आपके बारे में मैं जहन में लेकर आऊँ आपके इल्म को, आपकी सूरत को, तो सूरत जो मेरे जहन में हाजिर होगी वो इल्मे ख्याली कहलाएगी। अब ये जो सूरत आपकी मेरे जहन में आई है ये कब आती है? कि जब मैं पहले हिस कर चुका हूं आपको, जब मैं आपको देख चुका हूं। बस चूंकि सूरत ख्याली इल्म ख्याली मुतवक्किफ है इल्म मादी के ऊपर, बस इसको भी कहते हैं ये भी इल्म जुज़ी है। वइल्ला फलसफे में ये बात साबित है और इसकी तरफ इशारा भी हुआ है, और नहीं मालूम आगे इसका इशारा आएगा या नहीं। मफहूम जब भी जहन में आता है हमेशा कुल्ली होता है। मंतिक में ये जो तकसीम की जाती है कि मफहूम या कुल्ली है, ये जुज़ई इब्तिदाई स्टूडेंटों के लिए ताकि एक मतलब समझ में आ जाए उनके। वाइला जब दकीकतर होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मफहूम जब भी मफहूम बन जाए, जहन में आ जाए, वो हमेशा कुल्ली होगा। चाहे 1000 कैदें आप उसके साथ लगा दें, वो कुल्ली का कुल्ली ही रहेगा। जुज़ई हमेशा कहाँ है? खारिज। यानी आप जुज़ई है ना, आपकी सूरत वजूद मुसाविक है या मुसावी है जुज़ियत के साथ, तशख्खुस के साथ। बस इल्मे ख्याली को किस एतबार से जुज़ी कहा है? मसलन कोई आपसे पूछ ले सवाल के अंदर इल्मे ख्याली क्यों जुज़ी है, जवाब क्या है? क्योंकि इल्मे ख्याली मुतवक्किफ है किसके ऊपर? इल्मे मादी के ऊपर। इस वजह से इसको कहते हैं ये इल्मे जुज़ी है। इसके बाद दूसरा मतलब जो यहाँ जिक्र करते हैं वो ये कि ये जो दो सूरतें हैं हमारे पास, यानी दो इल्म जो हैं इल्मे मादी व इल्मे ख्याली, ये खुद मुजर्रद हैं। क्योंकि पहली फसल के अंदर असल इल्म के तजर्रुद के ऊपर भी बुरहान इकामा किया है, और यहाँ पर तकरीबन उसी का दोबारा तकरार और एक दो चीजें इजाफे करके बयान करते हैं कि इल्म जो भी हो, इल्मे मादी, इल्मे ख्याली, इल्मे तखय्युली, वहमी, अकली, जितने आप इल्म लेकर आ जाएं, तमाम की तमाम अकसाम मुजर्रद हैं। दलील क्या है? तीन बुरहान यहाँ पर इकामा करते हैं। पहला बुरहान क्या है? पहला बुरहान ये इकामा करते हैं कि इल्म मुजर्रद है, और फिर क्या है, इल्मे ख्याली और इल्मे मादी भी मुजर्रद है। उसकी वजह यह है, कहते हैं कि इल्म, चूंकि पहले हम बात साबित करके आए हैं पिछली फसल के अंदर कि इल्म काबिले तगय्युर व तहव्वुल नहीं है, इल्म में तगय्युर नहीं आते, तहव्वुल ایجاد نہیں ہوتا، علم کے اندر حرکت نہیں پائی جاتی، علم ثابت ہے. آگے جیسے بعد والے برائد میں ہوگی اس کی اور تبدیل ہو جائے گی زیادہ، کیونکہ پہلی سطح میں بیان بھی کیا ہے لیکن آگے پھر کا اشارہ آ رہا ہے وہاں پہ اور زیادہ تبدیل کر دوں گا. پہلا مقدمہ کیا ہے برہان کا؟ کہ علم میں تغیر و تبدل نہیں پایا جاتا، اس میں قابلیت تغیر و تبدل نہیں ہے. تغیر حرکت، تبدیل ہو جانا، مثلا پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا ہے. تغیر ہے، تغیر ہے مثلا کہ وہ بدل رہا ہے. مثلا یہاں پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مثلا سب مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں مجھے علم حاصل ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ علم کبھی تغیر پذیر نہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی آپ مثلا بعد میں کوئی اشکال کرے، میں سوال ذہن میں آ گیا، بابا علم تو تبدیل ہو جائے، کیوں آپ اٹھ گئے تو مجھے کیا ہوگا؟ اٹھنے کا علم ہو جائے گا. بس پہلے بیٹھنے کا علم تھا، اب اٹھنے کا علم ہے، علم تو تغیر کر گیا. لیکن انسان دقت کرے، تغیر نہیں ہے یہاں پر. بیٹھنے کا جو علم ہے وہ اپنی جگہ محفوظ، میرا نیا، میرے پاس نیا علم ایجاد ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر میں آپ کے بیٹھنے کی صورت اپنے ذہن میں لاؤں، آ جاتی ہے نہیں آتی؟ اگر تغیر لازم آتا علم کے اندر تو وہ صورت ختم ہو جانی چاہیے. علم اپنی جگہ باقی ہے، فقط کیا ہو رہا ہے، علم علم کے بعد علم حاصل ہو رہا ہے. یہ اتنا تیزی سے فعل انجام پاتا ہے، یا مثلا آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے میرا علم بدل رہا ہے، علم نہیں بدلتا. مثلا میں اب یہاں سے چل رہا ہوں ایسے، ٹھیک ہے، اب ایک نقطے پہ جب میں موجود تھا آپ کا ایک علم ہے، دوسرے نقطے پہ جب پہنچ رہا ہوں اب علم نہیں بدل رہا، بلکہ علم آپ کا ثابت ہے. جب میں اس نقطے میں تھا وہ علم اپنی جگہ باقی ہے، نہیں تبدیل ہوا. جب میں دوسرے نقطے میں گیا تو یہ دوسرا علم آیا ہے، نہ یہ کہ پچھلا علم بدل کر دوسرا علم بن گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. بالکل تغیر کا معنی یہ ہے کہ پچھلا مرتبہ ختم ہو جائے، اگلا مرتبہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں تغیر. جس طرح کے مثال دی، مثلا پانی اگر 100 سینٹی گریڈ پر گرم کر دیا جائے کیا بن جاتا ہے؟ بخار آیا. جب بخار بنتا ہے پانی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں تغیر. جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے سے چل کے حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں. جب آپ چلیں گے تو مدرسے میں رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. اسے کہتے ہیں حرکت کا تغیر. لیکن آیا صورت میں ایسے ہے؟ آپ کے بیٹھنے کا علم جب وہ اپنی جگہ پر، اگر میں 10 سال کے بعد بھی اگر سوچوں گا آپ کے بیٹھنے کے بارے میں، وہ صورت میرے سامنے حاضر ہو جائے گی. علم ثابت ہے، علم میں تغیر نہیں، علم مجرد ہے. اسے کہتے ہیں علم مجرد. کہتے ہیں کہ علم قابل تغیر و تحول نہیں ہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ ہر مادی حادثہ یا جو بھی آپ لے لیں، حادثہ عام ہے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ قابل تغیر و تبدل ہے. یعنی آپ جو بھی مادی چیز دیکھیں گے وہ حتماً کیا ہے؟ تغیر و تبدیل ہو رہی ہوگی، تغیر و تبدل آ رہا ہوگا اس کے اندر. مادی چیز کی جیسے مثال دی تھی، انسان مادی ہے. اس وقت میڈیکل نے کیا ثابت کیا ہے؟ کہ ہر انسان کیا ہے؟ دم بدم تبدیل ہو رہا ہے. فلسفے نے بھی ثابت کیا، آ کر ملا صدرہ کے مبنے کے مطابق حرکت جوہریہ ہے. کیا مراد؟ آپ ایک سیکنڈ پہلے جو تھے دوسرے سیکنڈ میں وہ نہیں ہے، دم بدم آپ کا جوہر تبدیل ہو رہا ہے. تمام کائنات ایسے ہی ہے، کل کچھ ہے آج کچھ ہے، تغیر و تبدل پایا جاتا ہے. پس نتیجہ کیا نکلے پاس ان دو مقدموں کے ساتھ؟ کہ علم کیا ہے؟ مجرد ہے. کیوں؟ علم میں تغیر نہیں ہے، اور ہر مادی چیز میں تغیر ہوتا ہے، پس علم میں تغیر نہیں ہے. جب تغیر نہیں ہے پس وہ مجرد ہے. یہ ایک برہان اقامہ کیا ہے انہوں نے. دوسرا جو یہاں پر برہان اقامہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صور علمی सूरत हो, जिस किस्म की सूरत भी हो वो सब की सब क्या है, माजी से मुराद यहाँ पे हिस्ट्री लिख लें तो बेहतर है, वो पीछे भी जो मैं मतालिक जिक्र करके हैं उसमें हिस्ट्री लेकर आए ज्यादा बेहतर है। सोअर तीनों चाहे हों, जो भी सूरत होगी वो सूरत क्या होती है, काबिले सिद्क बरकसीरीन होती है, काबिलियत सिद्क होती है। जैसे अभी अर्थ किया आपको, आप जो अगर एक चीज सूरत बनकर जहन में आ गई, यानी सूरत वही मफहूम, सूरत जहनिया, सूरत इल्मिया यानी मफहूम, सूरत इल्मी हमेशा सिद्क बरकसीरीन करती है, काबिलियत मौजूद है, वो एक से ज्यादा पर हमल हो सकती है, उसके मसादिक ना भी हों उसके अंदर काबिलियत, जब भी वो जहन में आ गई उसकी खासियत यह है कि वो कुल्ली हो जाती है, पहला मुकदमा। दूसरा मुकदमा क्या है, तमाम उमूर मादी क्या है, जुज़ई व मुतशक्किस हैं, दूसरा मुकदमा क्या है कि तमाम उमूर मादी मुतशख्खिस हैं, मसलन आप एक अमरे मादी हैं, आप जुज़ई व मुतशख्खिस हैं, यानी आप वो नहीं हैं, और इसी तरीके से आप कायनात, ये मार्कर जो है ये मार्कर नहीं है, सूरत अगर मार्कर की आ जाए तो वो इन सब पे सिद्ध करेगी, लेकिन ये जो खारिज में मार्कर मौजूद है ये मार्कर नहीं हो सकेगी। इसके साथ बनी हुई जितनी भी मार्कर हैं, मार्केट जब बनाती है मार्कर तो एक जैसी बनाती है, असलन 1% का भी उनके अंदर कोई जो है वो तब्दीली नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं, वहां भी ये नहीं कह सकते कि ये मार्कर जो है वो सब पे सिद्ध कार्य है, ना ये अपनी खुद है और वो खुद है, तमाम उमूर मादी मुतशखिस व जुजी है। नतीजा क्या निकला, नतीजा आसान हो गया, सुवर इल्मिया काबिलियत सिद्ध रखते हैं, उमूर मादी जुजी व मुतशखिस हैं, बस क्या नतीजा निकला, बस इल्म मादी नहीं है क्योंकि उसके अंदर तशखुस नहीं पाया जाता, उसमें जुजियत नहीं पाई जाती, काबिलियत सिर्फ पाई जाती है, बस वो मादी नहीं है बल्कि क्या है, मुजरद है। ये दो दूसरा बुरहान इन्होंने यहां पर कहा। तीसरा बुरहान भी आसान है, और ये हम चूंकि बात से मुफस्सल पढ़ के आए हैं लिहाजा इसे बात से ज्यादा तोजी की जरूरत भी नहीं है। तीसरा बुरहान का पहला मुकदमा क्या है, तमाम उमूर मादी काबिले इंकसाम है, जमान रखते हैं और मकान, हर अमरे मादी जमान भी रखता है मकान भी रखता है, और क्या है वो इंकसाम भी रखता है, आप तकसीम कर सकते हैं उसको, हर चीज को मार्कर ले लें उसको तकसीम कर दें, मेज ले लें उसको तकसीम कर दें, धागा ले लें उसको तकसीम कर दें, लकड़ी ले लें उसको तकसीम, जितनी आप मिसालें ले सकते हैं काबिले इंकसाम है, जमान मान भी है, जमाना चुके उनको शामिल है, चुके इस कायनात में जिनकी कारण आर्ज किया था जमान की हकीकत गुजर गई है, जमाना कहाँ से पैदा होता है, हर मादी चीज हमेशा जमान मानता है क्योंकि हर मादी चीज मुतहर्रिक है, उस हरकत से जमाना निकलता है, बस वो जमान मान भी है, मकान भी रखती है, यानी हर मादी चीज का कोई ना कोई मकान होगा, बस ये तीन खसूसियात किसके अंदर पाई जाती हैं, अमरे मादी के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा मुकदमा क्या है, सूरत है ये इल्मी, सूर इल्मी जो है वो इन सब को नहीं रखती, आप खुद लिख लें, तीनों चीजें नहीं रखती, सूरत इल्मी काबिले तकसीम नहीं है, यानी इस वक्त आपकी सूरत मेरे जहन में मौजूद है, मैं उसको तकसीम नहीं कर सकता, मसलन मिसाल देता हूं, फर्ज करें मसलन ये खत है, मेरी जहन में ये तस्वीर आ गई इस खत की, ठीक है, अब इद्दआ क्या है कि इसकी जो सूरत है मेरे जहन में वो काबिले तकसीम नहीं है, कोई बंदा सवाल करे बाबा काबिले तकसीम है, मैं इसको अपने जहन में दो कर सकता हूँ, मसलन इस वक्त आप सोच रहे हैं खत को, क्या आप उसको दो नहीं कर रहे अपनी सोच में, दो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जब ये दो कर रहा हूँ इसका निस्फ जो है मेरे जहन के अंदर आ रहा है तो ये तो काबिले तकसीम है, तो आप कैसे कह रहे हैं काबिल तकसीम नहीं है? जवाब उसका यह है कि आपने निस्फ की दो सूरतें नहीं इजाद की हैं। वो जो खुद पूरा खत था वो अपनी जगह बाकी है। क्या मतलब बाकी है? कहते हैं कि अगर आप क्या कहते हो, मसलन ये मसलन फर्ज करें हमारा जेन है और हमने एक खत को तसव्वुर किया था, ठीक है। खत को तसव्वुर करने के बाद हमने अपने जेन में इस खत को क्या किया है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। अब सवाल करने वाला ये कहे कि जब इस खत को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है तो आप कैसे कह रहे हैं काबिल इंकसाम नहीं है? जवाब उसका ये है कि आप कह सकते हो कि ये आधा है और ये आधा हिस्सा है। ये आधा हिस्सा किसका है? आधा किसका है? उसका है। वो उसका कब कहेंगे? कि जब ज़हन में मौजूद होगा। अगर आपने तकसीम कर दिया होता तो वो होता ही नहीं कि आप कहते हैं उसका है। बहरहाल इंसान थोड़ा सा तजर्रुद की तरफ आए तो इन मतालिब को आसानी समझ लेगा कि सूरह इल्मिया काबिल इंकसाम नहीं है। अगर तकसीम करते भी हैं तो ना ये कि उसको हमने असल को तकसीम कर दिया है, बल्कि उस असल के मुकाबले में चंद सूरतें नहीं हम जाल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये निस्फ है उसका। सूरत में इंकसाम नहीं है, जमान भी नहीं है, मकाम भी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि सूरह इल्मिया मुजर्रद है, काबिल इंकसाम नहीं है, मादी है, मादी नहीं है, बस ये जमान और मकान से भी बालातर है। यानी आप जमान मकान मकान से बालातर कैसे हैं? मसलन इस वक्त आपके जहन में एक मेरी सूरत है, लेकिन बता सकते हैं कि ये सूरत किस जगह मौजूद है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? इशारा कर सकते हैं? बस जिस जगह पर इशारा नहीं किया जा सकता वो मकान है। मकान रखते हैं, मैं कह सकता हूँ आप दाई जानी बैठे हो, मैं मसलन बाई जानी बैठे हैं, आप दाई जानी बैठे हैं, आप सामने बैठे, कह सकता हूँ। लेकिन सूरत के बारे में कह सकते हैं कि ये मेरे दिमाग के अगले हिस्से में है और वो दूसरे की सूरत मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में है, नहीं कह? आप कहते हैं मेरे जेहन में है, बस जेहन में किस जगह आप इशारा नहीं कर सकते। मालूम हुआ कि मकान भी नहीं, उसी तरीके से जमान भी नहीं रखता, नहीं कह सकते कि ये कल वाली है, वो परसों वाली, इस तरीके से कोई उसको तकसीम भी नहीं किया जा सकता। बस मुझे ज्यादा है, नतीजा ये निकला क्योंकि उमूर माती में ये तीन खसूसियात पाई जाती है, सोवर एलमिया में ये तीन खसूसियात नहीं है, बस इल्म जो है वो मुजर्रद है। और ये असले इल्म के मुजर्रद होने पे भी मतलब साबित है और खुद इल्म हिस्सी व ख्याली भी मुजर्रद है इन्हीं बराहीन के तरह। ये तीन बराहीन उन्हीं पे, उन्हीं के तजर्रुद पर जो है वो इकामा की हैं। अगरचे मैं जब आपको देख रहा हूँ ये इल्म इल्म हिस्सी है, लेकिन ये इल्म हिस्सी भी मुजर्रद है और उसकी ये तीन बराहीन है कि जो अर्थ कर दिया है इल्म हिस्सी और इल्म ख्याली। एक बंदा अगर एतराज करता है कि आपने कहा है कि सुवर हिस्सिया व ख्यालिया जो हैं ये ना तो जमान रखती हैं ना ही मकान रखती हैं, वो कहता है कि मैं आपको मिसालें देता हूं जिससे वाजे होगा कि ये जमान रखती हैं। मसलन आप मदरसे से चले हैं हरम की तरफ, जब आप मदरसे से चले हैं तो उस वक्त एक इल्म मेरे पास है और जब आप हरम के पास पहुंचे हैं उस वक्त क्या है, मेरे पास एक इल्म मौजूद है। बस यहाँ क्या है, इल्म मुझे आपके इब्तिदा का भी है और इंतहा का भी है और ये जमाने के अंदर है। यहाँ जो इल्म था वो एक जमाने में था, वहां इल्म था वो कौन सा, किसी और जमाने के अंदर है। बस यहाँ पर क्या है, इल्म जमाना रखता है। आप कैसे कहते हैं कि इल्म जमाना नहीं रखता? और इसी तरह ये तकरीबन मकान का भी इसी तरीके से शुभा करते हैं। जवाब उसका आसान है, जवाब उसका यह है कि यहाँ पर मेरा खारिज में होना जमान के साथ मुकय्यद है कि मैं जमानमंद हो चुका, लेकिन आपके बारे में जब मैं इल्म हासिल करूंगा वो जमानमंद नहीं है। हाँ, आपका वजूद चूंकि जमानी है, आप एक जमाने में यहां हैं दूसरे जमाने में यहां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इल्म भी जमान रखता है। यानी वहां पर पहले इल्म मौजूद था, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, दूसरा इल्म आ गया। पहले से तबीन कर दिए मैंने, वो इल्म जो वहां पर हासिल हुआ था वो खत्म नहीं होता। ये मुकय्यद शय खारजी है, मालूम बिल अरज मुकय्यद बे जमान है, लेकिन मालूम बिजात जो है यानी सूरत ज़हनी है वो मुकय्यद बे जमान नहीं है। बस आपको ये ख्याल हुआ उसके समझ। एक इश्काल मुहिम इश्काल करते हैं, मसलन अगर इसकी तरफ तवज्जो ना हो तो मुमकिन है दोस्तान जो है वो इस शुबहे के अंदर आ जाए। मसलन आपने देखा होगा कि अगर इंसान के सर में चोट लगे तो उसके पास जितना इल्म है वो क्या हो जाता है, खत्म, मेमोरी साफ हो जाती है। इश्काल करने वाला ये कहता है कि आप कहते हो कि इल्म मादी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इस दिमाग का एक खास हिस्सा है कि उसके अंदर अगर खराबी आए तो खुद इल्म के अंदर भी वो असर डालता है। किसी को मतलब भूलने की बीमारी लग जाती है क्योंकि वो चीज खराब हो गई, किसी की मेमोरी खत्म हो गई है क्योंकि वहां पे खराबी आ गई। कहते हैं कि आप जब कहते हो कि इल्म मादी नहीं है तो फिर इसका इस मादे के साथ क्या ताल्लुक है, इस दिमाग के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब मुझे इल्म हासिल हो गया, आप मेरे दिमाग के ऊपर डंडा मार भी दें, मुझे वो इल्म तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इल्म मुजर्रद है, मादे के साथ ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि जिस बंदे का एक्सीडेंट होता है, कोई मसाला बनता है, दिमाग में चोट लगती है, तो वो बंदा अपने हवास खो देता है। और जब तक वो खास हिस्सा उसका दुरुस्त ना हो उस वक्त तक इल्म उसका वापस नहीं आता। तो आप कैसे कहते हैं कि ये इल्म, और ये क्या है आज तहकीकात ने साबित किया है इस बात, आप कैसे कहते हैं इल्म आती नहीं है? जवाब क्या उसका, जवाब उसका ये है कि हम इस बात से मुमकिन नहीं है कि इस दिमाग का इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिमाग, वो इल्लत वाली बातें अगर आपके जहन में होगी मतलब आसान हो जाएगा। ये दिमाग इल्लत नहीं है इल्म के हुसूल की, बल्कि क्या है, मुइद्द है। इल्लत हकीकी और इल्लत मुइद्दा में क्या फर्क है, अर्ज किया था। पानी इंसान की प्यास बुझाता है या खुदा? पानी क्या करता है, पानी नफ्स से इंसान को इस काबिल बनाता है कि खुदा के फैज को ये नफ्स हासिल कर सके। बस खुदा है कि जो प्यास बुझाता है, लेकिन ये पानी नफ्स को आमादा करता है उस फैज को लेने के लिए। पानी इल्लत मुइद्दा कहलाता है और खुदा इल्लत हकीकी। इल्लत हकीकी यानी जो साहिब असर हो, जो इफाजा करे, जिससे फैज हो, वजूद अता करे। जो फरमाते ये दिमाग का वो खास हिस्सा महल नहीं है इल्म का, उसका काम फकत और फकत क्या है, इंसान के नफ्स को मुस्तैद रखना है कि वो उलूम को कस्ब कर सके। बस इतना काम है, ना ये कि मेरा इल्म सब का सब जो है वो इस खोपड़ी के अंदर जमा हो रहा है। इस दिमाग का काम फकत क्या है, मेरे नफ्स को आमादा रखना कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, इल्म को कस्ब कर सके। ना ये कि ये दिमाग और ये खोपड़ी, ये मग्ज जो मेरे खोपड़ी के अंदर मौजूद है, ये महल है इल्म का, यानी इल्म इसके अंदर मौजूद है, अगर इसको निकाल दिया जाए, दूसरे में डाल दे। तो मतलब आपने बाज़ का देखा होगा, मीडिया वाले बाज़ का इस किस्म के ड्रामे फिल्में बनाते हैं, मतलब एक का दिमाग निकाल के दूसरे में डाल देते हैं और फिर क्या है, उसकी तमाम जो याददाश्तें हैं वो क्या है, कहाँ मुंतकिल हो जाती हैं, उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है। ये कौन सी फिक्र है, ये मादी फिक्र है, ये उनकी फिक्र है कि जो ये समझते हैं कि तमाम इल्म जो है वो इस खोपड़ी के अंदर जो मग्ज मौजूद है उसके अंदर है, अगर इसको इंतकाल दे दिया जाए तो ये मेरी जो मेमोरी है वो वहां मुंतकिल हो जाएगी और उसकी मेमोरी क्या आ जाएगी, मेरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। नहीं, कितने कायदे इसके अंदर मौजूद है, ये फकत इस्तेदाद का काम अंजाम देता है, नफ्स को मुस्तैद रखता है कि वो इल्म को हासिल कर सके। अगर वो खास हिस्सा खराब हो जाए तो नफ्स मुस्तैद नहीं रहता इल्म को हासिल करने के लिए। ना ये कि ये फिल्म जो है वो मादी नहीं है। इसके बाद एक और मतलब की तरफ जो इशारा करते हैं वो ये है कि इल्म अकली व इल्म कुली कहां से हासिल होता है हमें। आपने मंतिक में पढ़ा होगा, मंतिक मुजफ्फर में, मंतिक मुजफ्फर ने इस नजरिए को वहां पर जिक्र किया है कि इल्म कुली को कैसे हासिल किया जाता है। उसकी मिसाल ये देते हैं कि मसलन फर्ज करें इंसान कुली को मैंने अगर दर्क करना है तो कैसे दर्क करूं। तो उसकी मिसाल ये देते हैं, मतलब मैं आपको दर्क करता हूं, आपको दर्क करता हूं, आपको दर्क करता हूं, आपको दर्क जब कर लिया मैंने, आप की सूरतें मेरे पास हाजिर हो गई, फिर मैं क्या करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो इम्तियाजात हैं उनको जुदा करना शुरू करता हूं। मसलन आपका एक खास रंग है, मैं कहता हूं ये इसकी हकीकत में शामिल नहीं है, उसको मैं जुदा कर देता हूँ जहन में। आपका भी मसलन कद खास है, मैं उसको भी जुदा कर देता हूँ। इसी तरीके से आपकी सिफात हो रहे हैं, इनकी सिफात हो रहे हैं, उनकी सिफात हो रहे हैं, मैं उनको भी क्या कर देता हूँ, जुदा कर देता हूँ। यानी अपने जहन के अंदर क्या कर रहा हूं, तमाम इम्तियाजात को के जो एक दूसरे के साथ रखते हैं उनको सल्ब कर रहा हूं। सल्ब करते 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 एक मकाम ऐसा आएगा कि जहां फकत और फकत एक हकीकत रह जाएगी बगैर इम्तियाजात के। तो कहते हैं कि ये तमाम इम्तियाजात को सल्ब करने के बाद जो हकीकत बचती है वो हकीकत कहलाती है कुल्ली, इंसान कुल्ली इसे कहते हैं। मसलन आपने सबसे पहले दर्क किया अलिफ को तमाम खसूसियात के साथ, बे को तमाम खसूसियात के साथ, जीम को तमाम खसूसियात के साथ, फिर आपने क्या किया, इनकी खसूसियात को जुदा करना शुरू किया। करते 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 आप एक नतीजे पर पहुंचे कि हैवान नातिक की हकीकत जो है वो इन सब में तो पाई जाती है, इसके अलावा कोई भी चीज इन सब के अंदर मुश्तरक नहीं है। मैं यहां से नतीजा ले लेता हूं कि बस इसका मतलब यह है कि इंसान की हकीकत क्या है, इंसान हैवान नातिक, और ये क्या है, ये मेरा इस तरीके से मफहूम जहन के अंदर लेकर आ जाना ये मफहूम कुल्ली है। शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह ने मिसाल दी है, मंतिक मुजफ्फर की तरफ रजू करें तो वहां पर यह वाज तौर पर मौजूद है। इसको कहते हैं नजरिया तकशीर। शेख मुजफ्फर ने इसको नजरिया तकशीर, किसे कहते हैं, छिलके को कहते हैं। तकशीर क्या होती है, छिलके को उतारने का अमल क्या कहलाता है, तकशीर, तकशीर अंजाम देते हैं। यानी क्या मुराद, आप उसके छिलके को इतना उतारते हैं, इतना उतारते हैं कि लुब तक पहुंच जाते हैं। वो लुब क्या होता है, इल्मे कुल्ली होता है। ये मारूफ नजरिया है कि जो मंतिक के अंदर मौजूद है, और मुल्ला सदरा से पहले शायद ये नजरिया मौजूद था कि कुल्ली इस तरीके से हासिल होती है। लेकिन मुल्ला सदरा के बाद ये नजरिया बातिल हुआ कि इल्मे कुल्ली तकशीर से हासिल नहीं होता, इल्मे कुल्ली मुस्तकिल दर्क होता है। ये बाद वाले फलासफा यानी मुल्ला सदरा और उनके बाद आज तक ये नजरिया चल रहा है। इल्मे कुल्ली ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको दर्क करूं, फिर उनके इम्तियाजात को सल्ब करूं, फिर जाकर इल्मे कुल्ली क्या है इसी में से निकालूंगा ना। इल्मे कुल्ली अलग एक हकीकत है कि जो ये नफ्स अलग से दर्क करता है, इल्मे जुज़ई अलग से दर्क करता है, इल्मे कुल्ली अलग है कि जो दर्क करता है ये। तो कहते हैं ये तकशीर वाला नजरिया फिर क्या करें इसको, तो कहते हैं ये इम्तियाजात को सल्ब करना और खसूसियात को सल्ब करके लुब तक पहुंचना ये नफ्स के लिए मुस्तरिद वाकई होता है कि इस तरीके के जरिए नफ्स ऐसे मकाम पर पहुंचता है कि वहां पहुंचकर ये खुद इल्मे कुल्ली को दर्क करता है। ना ये कि इन तमाम चीजों की खसूसियात को बरतरफ कर दो, इसके अंदर से एक मफहूम कुल्ली निकल कर आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, इल्म कुल्ली ये जो नजरिया है, नजर तकशीर जो है, ये इस्तेदा यानी इल्लत मुइद्दा है किसके लिए, इल्म कुल्ली को दर करने के लिए। बस इस तरीके से कुल्ली हासिल होती है। नजरिया तकशीर जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इल्म जो है वो उसके बाद जो आखिरी मतलब इस फसल के अंदर बयान करते हैं वो ये कि अब हमने यहाँ तक कितने इल्म को पढ़ लिया, हमारे पास एक इल्म अकली मौजूद है, एक इल्म ख्याली मौजूद है, एक इल्म हिस्सी मौजूद है। इल्म हिस्सी कहाँ पाया जाता है? कहते हैं कि जहां पर मादा व आसार मादा दोनों चीजें हैं उसे कहते हैं इल्म हिस्सी। मसलन मैं अभी आपको देख रहा हूं, ये इल्म मेरा इल्म हिस्सी कहलाएगा। तो यहां क्या है, मेरा इर्तिबात मादे के साथ भी है और आसारे मादा के साथ भी, ये इल्म इल्म हिस्सी कहलाएगा। और इल्म ख्याली कहां है, मादा तो ना हो लेकिन आसारे मादा मौजूद हो। मसलन आपकी सूरत जो मेरे जहन के अंदर मौजूद है, आंखें बंद करने के बाद भी उसको दर कर रहा हूं, मादा तो नहीं है, क्योंकि मादा अगर होता तो आपकी कदोकामत के मुताबिक मेरा दिमाग होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिमाग छोटा सा है और आपकी तस्वीर मेरे जहन में मौजूद है उसी उसी कदोकामत के साथ। बस का मतलब है कि मादा मौजूद नहीं, आसारे मादा हैं। क्या मुराद आसारे मादा हैं? यानी आपकी जो शिक्लो शमायल है, आपका कद्दो रंगत जो है, इसी तरह की मेरे जहन के अंदर सूरत मौजूद है, बस आसारे मादा हैं, यानी शिक्लो शमाइल मौजूद है लेकिन खुद मादा मौजूद नहीं है। बस ऐसे इल्म को इल्म ख्याली कहते हैं। और इल्म अकली जो असलन ना आसारे मादा रखता हो ना मादा रखता हो, इल्म अकली उसे कहते हैं। और इसको दर करना हर एक का काम नहीं है। अल्लामा तबातबाई से किसी ने पूछा कि जिंदगी में कभी आपने कुल्ली को दर्क किया? तो कहते हैं कि शायद एक दो बार किया। ये इल्म कुल्ली हासिल करना कोई इतना आसान नहीं है। बहरहाल इल्म कुल्ली वो है कि जिसमें ना तो आसारे मादा हो और ना ही मादा हो। बस ये तीन जब इल्म हो गए तो कहते हैं हमारे पास अवालिम भी तीन किस्म के हैं। आलम भी कितने हैं? तीन किस्म के हैं, आलम आकल, आलम ख्याल व आलम मादा। ये तीन अवालिम हमारे पास मौजूद हो गए और इनकी खसूसियात भी यही है कि जो इल्म के अंदर बयान कर दिए हैं। आलम अक्ल मुजर्रद है, ना मादा है ना आसारे मादा। आलम ख्याल आसारे मादा तो रखता है लेकिन मादा नहीं रखता। आलम ख्याल क्या है? ख्याल की दो किस्में हैं, ख्याल मुत्तसिल और ख्याल मुनफसिल। ख्याल मुत्तसिल हमारे ख्वाब है, रात को ख्वाब देखते हैं, पूरी पाकिस्तान फिर के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आप अपने बेड पर मौजूद होते हैं, सब कुछ, यानी तमाम चीजों को आप देखते हैं। ये क्या आसार है? ये ख्याल मुत्तसिल। ख्याल मुनफसिल क्या है? ख्याल मुनफसिल का एक मिसदाक जो है वो बरजख है। ख्याल मुनफसिल है वो, यानी वहां पे आसार मादा तो होंगे लेकिन मादा नहीं होगा। इस तरीके से तीसरा आलम जो है वो आलम मादा है, जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें मादा भी है और आसार मादा भी मौजूद हैं। बस ये तीन किस्म के अवालिम हैं। इसमें से आला व अकवा आलम कौन सा कहलाएगा? आलम अक्ल। और उससे कम दर्जा आलम ख्याल का है और सबसे पस्त दर्जा किसका है? आलम मादा का है, आलम हिस्सी है। इसी वजह से आप कुरान में देखते हैं खुदा ने क्या कहा, तबारक अल्लज़ी, क्या है वो आयत सूरह तीन के अंदर एक आखिरी आयत है ना, सुम्मा रददना हो इला या फकत असफला साफिलीन है सूरह तीन के अंदर। तो इससे पहले वाली आयत क्या है? सूरह तीन, सूरह यानी आखिरी पारे के अंदर है, आखिरी पारे में ही है ना, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। इंसान को हमने किया तो अहसन तकवीम में है, इसकी खिलकत अहसन व अकवम है, लेकिन फिर क्या है, सुम्मा रददना हो इला असफले साफिलीन, कहां? इस आलमी मादा में। और बहुत सारी तफासीर है लेकिन एक उसकी जो बयान की जाती है वो ये है। भारत ये तीन तीन इल्म है हमारे पास, इसके मुकाबले में तीन आलम हैं, इसकी अपनी खसूसियात हैं कि जिसकी तरफ इशारा कर दिया है। इसके बाद आते हैं तीसरी फासल के अंदर। तीसरी फासल के अंदर फिर जो है इल्म को कहते हैं, इल्म की फिर एक किस्म मौजूद है कि उसका नाम भी क्या है, इल्म या कुल्ली है या जुज़ी है। इल्म हुसूली है और इल्म हुसूली फिर एक आप मंतिक में पढ़ते हैं जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं दूसरी फसल के अंदर कि जुज़ई वो है कि जो काबिलियत सिदक नहीं रखती और कुल्ली उसे कहते हैं कि जो काबिलियत सिदक रखता है, काबिल सिदक पर कतई नहीं रखता। लेकिन हमारे पास कहते हैं कि कुल्ली और जुज़ई की एक इस्तेलाह मौजूद है कि जो फलसफे में ज्यादा मतरा होती है वो ये है कि इल्म कुल्ली किसको कहते हैं, इल्म साबित को। इल्म साबित को इल्म कुल्ली कहते हैं और जुज़ई किसे कहते हैं, इल्म मुतग़य्यिर को। इल्म मुतग़य्यिर को जुज़ई कहेंगे। ये एक खास इस्तेलाह है फलसफे के अंदर। मिसालें इसकी वाजह हैं, मैं अर्ज करता हूं मतलब ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक मरतबा क्या है, इंसान मसलन मिसाल ले लें, एक इंसान मुहंदिस है, मुहंदिस इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंजीनियर। इंजीनियर इंसान को देखें वो इमारत बनाने से पहले क्या करता है, नक्शा बनाता है। यानी इमारत बनने से पहले उसको वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसको पूरी इमारत के बारे में इल्म हासिल। अब जब इमारत बन रही होगी आया उसका इल्म तगयीर करेगा, पहला कमरा बना कोई इल्म तब्दील नहीं हुआ, दूसरा कमरा बना कोई इल्म तब्दील नहीं हुआ, पहला तबका बना इल्म तब्दील नहीं हुआ, दूसरा तबका बना इल्म तब्दील नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बनने से पहले उसको पूरे इमारत का यही कह रहे ना। बस यहां पर तगयुर लाजिम नहीं आ रहा। मसलन मैं अगर हूंगा इंजीनियर नहीं हूं, अब इमारत के बारे में इल्म नहीं होगा, पहला तबका बनेगा मेरा इल्म आ जाएगा। अच्छा पहले तबके में इन्होंने इस तरीके से बनाना है, इसमें टॉयलेट इस जगह रखा है, इन्होंने बैठक इस जगह रखी है, मसलन फलां मसलन इस तरीके से रखा है। जब दूसरा तबका बनेगा फिर मेरे इल्म में इजाफा होगा। अच्छा दूसरा तबका फिर इन्होंने इस तरीके का बनाया है, इसके नक्शा ही रखा है। मुहंदिस के इंजीनियर के इल्म में तब्दीली वाकई होगी, वो अपनी जगह रहेगा, पूरे का पूरी इमारत बन जाएगी, उसके इल्म में एक जर्रे का इजाफा नहीं होगा। इसको कहते हैं इल्म क्या है, इल्म साबित है। और इल्म साबित का दूसरा नाम क्या है, इल्म मा कबल अल कसरा। कसरत से पहले उसको इल्म है, कसरत से मुराद यानी जब वो बन रही है वो कसरत है। कसरत से पहले वाला इल्म क्या है, इल्म साबित कहलाता है। और ये इल्म साबित इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इल्म कुल्ली। खुदावंद का इल्म कुल्ली होगा या जुजी होगा, बस अगर कोई कहे खुदा का इल्म कुल्ली है तो कुल्ली मंतिक की तरफ नहीं जाना, चूंकि काबिलियत सिद्क रखता है बस कुल्ली है, वाइला कुल्ली नहीं है। खुदा का इल्म कुल्ली है यानी ये इल्म साबित रखता है, मा कबल कसरा है। इल्म जुज़ई यानी मुतगय्यर, जैसे मिसाल दे दी आपको, अब मैं जब अमारत को बनता देख रहा हूं मेरा इल्म तगय्यर कर रहा है। इल्म तगय्यर क्या कर रहा है, यानी इजाफा हो रहा है मेरे इल्म के अंदर, तब्दीली महसूस करता हूं अपने अंदर। इसको कहते हैं इल्म बादल कसरा, ये इल्म मुतगय्यर इल्म जुज़ई कहलाता है। ये हमारी जो है वो तीसरी फसल थी। इसके बाद जो फसल है चौथी फसल है वो अन نواحی تعقل کے اندر ہے. انواع تعقل میں مطلب آسان ہے اور چھوٹی فاصلے, اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جلدی سے مرحلہ ختم ہو. چوتھی فاصل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تعقل جو ہے یہ ہمارے پاس کتنا تین قسم کا موجود ہے. ایک تعقل بالقوا ہے. تعقل بالقوا کہاں پایا جاتا ہے؟ العقل بالقوا, یعنی یوں کہہ لیں عقل بالقوا. عقل بالقوا اس عقل کو کہا جاتا ہے, اس مرتبے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کا علم معقولات سے خالی نفس کو کیا کہیں گے؟ یہ عقل بالقوا. لیکن مثلا مثال لے لیتے ہیں, مثال کے ساتھ آگے چلتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. بچہ جب مادر سے متولد ہوا تو کیا تھا قرآن کے مطابق؟ لا تعلم کچھ نہیں. اس مرتبے کہتے ہیں العقل بالقوا, یعنی صلاحیت تو ہے تعقل کی لیکن موجود نہیں. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ مثلا فرض کریں مدرسے میں داخلہ لیتا ہے یا کسی علم کے اندر, ریاضی لے لیں, جو بھی لے لیں, جس علم میں بھی جاتا ہے. اب وہ مسئلے بے مسئلے کے مثلا فرض کریں توزیع المسائل کو پڑھنا شروع کرتا ہے, مسئلہ اول یاد کرتا ہے, مسئلہ دوم یاد کرتا ہے, باب طہارت سے لے کر باب دیات تک تمام توضیح جو ہے وہ رٹ لیتا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ مسئلہ اول کیا ہے, مسئلہ دوم کیا ہے, مسئلہ سوم کیا ہے اور باب دیات تک, کیونکہ پوری کتاب اس نے حفظ کی ہوئی ہے. بس ایسا علم دقت کرنی ہے, ایسا علم کہ جس کے اندر تفصیل موجود ہو, یعنی مسئلہ اول, مسئلہ دو, مسئلہ سے, مسئلہ چہار, مثلاً کر کر کے باب طہارت, باب دیات, یہ سب کیا ہو تفصیلی انداز میں اگر علم ہو, اس کو کہتے ہیں العقل بالتفصیل. عقل تفصیلی ہے, یعنی علم کیا ہے؟ تفصیلی ہے. تفصیل سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تفصیل سے مراد یہ ہے کہ علم بسیط نہیں ہے, علم کیا ہے؟ تفصیل میں ہے, یعنی مسئلے بے مسئلے تقسیم ہوا ہے. مثلا اگر کوئی ریاضی پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے الجبرا کے اندر کتنے فارمولے ہیں اور ان فارمولوں سے اتنے مسائل کیا ہو گئے ہیں, حل ہو گئے ہیں اور میں نے کیے ہیں, اور تو سارے مسائل کا علم ہے. بس مسئلے بے مسئلے اگر علم حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ عقل بے تفصیل ہے, یا عقل تفصیلی کہتے ہیں اس کو. یعنی کیا مراد؟ یعنی معقولات بالفعل موجود ہیں سب تفصیل کے ساتھ, کثرت کے ساتھ. اب توزیع المسائل پڑھنے والا بندہ اس کے علم کے اندر بالفعل تمام مسائل مسئلے بے مسئلے موجود ہیں, وہ بتا سکتا ہے پہلا مسئلہ کیا ہے, دوسرا مسئلہ کیا ہے, تیسرا مسئلہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل تفصیل. لیکن یہ طالب علم جب محنت کرے گا اور اس کے اندر اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو جائے گا تو اب آپ دنیا کی کوئی مشکل جو اس کے علم کے ساتھ مربوط ہوگی اس کے سامنے لا کر پیش کریں گے, اگرچہ اس نے اس مشکل کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ اس مشکل کو کیا کر لے گا؟ جب اس کا علم ملکہ بن جائے تو اس مرتبے کا کیا نام دیتے ہیں؟ عقل اجمالی. اجمال یہاں پر مجمل, اجمال اصولی نہیں ہے یہاں پر, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اصول میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ علم اجمالی ہے وہاں پر ایک جہل ہوتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے. یعنی کیا مراد؟ مثلا آپ باہر سے آئے ہیں, علم اصول میں یوں بات ہوتی ہے, آپ باہر سے آئے ہیں, آپ کو نہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ اس قالین پر نجاست گری تھی لیکن نہیں پتا کہ نجاست کہاں گری تھی. بس ایک علم ہے آپ کے پاس نجاست کا اور ایک جہل ہے آپ کے پاس یعنی وہ نجاست کہاں گری تھی. جب یہ دو مرکب ہو جائیں इल्म और जाहल आपस में, इसको उसूल में कहते हैं इल्म इजमाली। लेकिन फलसफे में जब कहीं भी आप इल्म इजमाली पढ़ेंगे, ये इल्म इजमाली मौजूद नहीं है। इल्म इजमाली यानी इल्म बसीत, इल्म इजमाली यानी इल्म अभी मसले बे मसले तब्दील नहीं हुआ। मसलन मिसाल देता हूं, आयतुल्ला सिस्तानी जब मुज्तहिद बने, उनके अंदर इल्म जो मौजूद था वो इजमाली था। जब तौजीहुल मसाइल लिखी है तो वो तफसीली बना। क्यों? तौजीहुल मसाइल में आकर मसला बे मसला इल्म बना है। ये मसला अव्वल है, ये मसला दुवुम है, ये मसला तिवुम है, मसला चारुम है, ये मसला पंजुम है। बात वाज़े? लेकिन खुद जब तौजीहुल मसाइल लिखने से पहले मुज्तहिद का जो इल्म है वो इल्म तमाम तौजीहुल मसाइल का इल्म रखता है, लेकिन इजमाली यानी क्या मुराद, बसीत, मसले पे मसले नहीं है। उसके सामने मुश्किल रखोगे तो वो हल कर पाएगा, लेकिन उससे पूछो यानी आया मसले पे मसले आपके पास इल्म है नहीं, उसके मसले पे मसले इल्म। यानी जब इल्म मलका बनता है तो इल्म उसका इजमाली होता है। इसको एक और मिसाल, हिस्से एक और ज्यादा मिसाल दे दूं। ना ना, वो इजमाली, वो इजमाल का तारुफ वो और है। इजमाली तारुफ का मतलब यह है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ थोड़ा बहुत नहीं जानता, इसको कहते हैं इजमाल। अर्ज कर रहा हूँ, फलसफे में इजमाल इबहाम के माना में नहीं है, हमारी जबान में इजमाल इबहाम के साथ है। या मुझे इजमाली इल्म है उसका, यानी क्या मुराद, मुझे कुछ पता है कुछ नहीं पता, इसको कहते हैं इजमाल। लेकिन फलसफे में जब इजमाल कहा जाता है यानी इल्म बसीत, मिसाल देता हूँ उसकी। कुरान नाजिल होने से पहले सूरा बे सूरा मौजूद नहीं था। मुझे वो आयत याद नहीं है इसकी, क्या है, उहकिमत आयातो सुम्मा फुस्सिलत, उसमें कहा कि उहकिमत आयातो सुम्मा फुस्सिलत। कुरान की हकीकत मुजमल है यानी बसीत है, यानी कल्बे पैगंबर पर नाजिल होने से पहले कुरान बसीत था। ऐसा नहीं है कुरान पहले मौजूद था कि सूरह हम्द से शुरू हो और सूरह नास पे खत्म हो। इसको कहते हैं ये कुरान क्या है, इल्मे तफसीली है। लेकिन इसकी हकीकत जो लोहे महफूज पर मौजूद है वो इस तफसील में नहीं है। है पूरे का पूरा कुरान लोहे महफूज पे, लेकिन तफसील के साथ नहीं है। बस जब तफसील ना आए वो पूरे का पूरा इल्म, उसको कहते हैं इल्मे बसीत। लेकिन वही इल्म जब इस तरह तफसील में बदल जाए, सूरतों में बदल जाए, कलेमात में बदल जाए, जुमलात में बदल जाए, आयात में बदल जाए, उसको कहते हैं इल्म तफसील। इजमाल यानी इससे पहले है, यानी इल्म है पूरे का पूरा। इस वक्त मर्जे के पास तमाम अबवाबे फिक का इल्म है। हाँ, जब उसके अंदर मौजूद है इजमाली है यानी बसीत है, यानी उसके नफ्स में मसले पे मसले तकसीम नहीं हुआ। लेकिन जब वो किताब लिखेगा तो उसका वो इजमाली इल्म क्या बनेगा, तफसीली हो जाएगा। बात वाज़े हुई है? कुरान की हकीकत मुजमल है यानी बसीत है, लेकिन जब इसने तनज्जुल किया तो फिर ये तफसील में बना, सूरे बेसूरा हुआ, आयात में बदला, कलेमात में बदलना पड़ा इसको, ये तफसील का मरहला है। लेकिन जो हकीकत है जो लोहे महफूज में है, वो लोहे महफूज में ऐसा नहीं है कि लोहे महफूज के अंदर सूरह अलहम्द और इसी तरीके से लिखी हुई है, फिर सूरह बकरा है, ना, पूरे की पूरी हकीकत बसीत अंदाज में। दर्क करना मुश्किल है, मालूम है, लेकिन यह कि हकीकत यह है। यहां पे एक नुक्ता, एक जैसे अर्ज करता हूं, आपने खुद मिंबर से सुना होगा कि मौला अली जब घोड़े पे सवार होते थे, सुना, एक रकात रकाब में पांव रखते थे तो कुरान पढ़ना शुरू करते थे, दूसरी रकाब में कुरान खत्म। अब यहाँ पे मुवाफिक भी मौजूद हैं इस फजीलत के और मुनकिर, और दोनों को समझ में नहीं आया कि हकीकत। अगर वो रिवायत दुरुस्त हो, हर चीज की सनद सही होगी तो मानेंगे उसे, बिल्फर्ज उसकी रिवायत सही है, मुनकरीन क्या कहते हैं कि मौला अली इस कुरान की तिलावत करते हैं, तो बईद है। इस कुरान के सूरह अलहम्द से शुरू करें वन्नास तक आए तो जमाना क्या है, इसको तसव्वुर नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। जो इस फजीलत को बयान कर रहे होते हैं उनकी नजर में भी यही कुरान है। लेकिन एक अकीदा हमारा ये है कि जब आइम्मा, इमाम वो होता है जो किसका मुताला करता है, लोहे महफूज, और कुरान कहां है, लोहे महफूज में। किस हालत में है, तफसीली या बसीत? जब वहां तफसीली मौजूद नहीं है, पूरे का पूरा कुरान बसीत हालत में है, तो बसीत का मुताला करने में कितनी देर लगती है। ये फायदा है तफसीलों का, ये जब तक ये बातें ना पड़ी होती, ना इल्मे कलाम में ये बातें मिलेंगी, ना इल्मे उसूल में, ना इल्मे फिक्र। हमारी आज ये है, जाहिरन फलसफा मुश्किल लगता है और ला यानी बातें और सख्त तो पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब इस्तिलाहें हैं, वाकई सख्त है, लेकिन इंसान अगर इसको सही दिक्कत से पढ़ के जब रिवायात में जाता है, कितनी रिवायात हल होती नजर आती है। पर कर दिया, दर्क करना मुश्किल है, आप दर्क की तरफ ना जाएं, फकत समझें, यानी ये कुरान इस वक्त तफसील में है, यानी सूरा बा सूरा मौजूद है, लेकिन जब इल्म इस तफसील हो, पूरे का पूरा इल्म लेकिन तफसील में ना हो इस तरीके से, उसको कहते हैं इल्म बसीत। यानी उसकी आसान मिसाल मलका है, मुज्तहिद को क्या है, मलका इज्तिहाद हासिल है, यानी उसको बाबे तहारत से लेकर बाबे दयात तक तमाम मसाइल को हल करने की कुदरत मौजूद है, लेकिन आया तुज़ीउल मसाइल की तरह उसके अंदर मसला पे मसला मौजूद है नहीं है। इल्म मौजूद है पूरे का पूरा, लेकिन तफसील में मौजूद नहीं है। बस मलका इल्म इजमाली है, और वो जब आता है जबान पर या किताब में तो क्या बन जाता है, तफसीली बन जाता है। इतना ज़हन के अंदर रखें, बस हमारे पास एक अक्ल बिलकुवा है जहाँ कुछ भी नहीं है, एक अक्ल तफसीली है कि जहाँ क्या है, माकूलात कसरत के साथ बिलफेल मौजूद है, यानी कसरत बिलफेल मौजूद है, यानी मसला अव्वल मसला दुवम मसला सिवम बाबे अव्वल बाबे दुवम, ये सारा मेरे अंदर बिलफेल मौजूद है। यानी तालिबे इल्म जब तुज़ीउल मसाइल पढ़ता है तो मसाइल को याद करता है, तो कसरत उसके अंदर बिलफेल मौजूद होती है, यानी उसको पता होता है कि मसला अव्वल क्या है, मसला दुवम क्या है। लेकिन जब मलका ईजाद हो जाता है तो वो मलका क्या कहलाता है, इल्म अक्ल इजमाली का मरहला है, वो अक्ल इजमाली यानी इल्म बसीत, वहां पर मसले भी मसले इल्म नहीं होता। ये मिसाल दी थी इस अक्ल को समझाने के लिए ताकि मतलब वाज़े हो जाए। पस अक्ल की तीन किस्में हैं, एक अक्ल बिलकुवा है, एक अक्ल बिलतफसील यानी अक्ल तफसीली है, और एक अक्ल अक्ल इजमाली है। ये तीन किस्में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किए जो आपके जहन में होना चाहिए। इसके बाद फिर बाकी मतालिब हैं